इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना चाहिए और जीवन को अच्छे बनाने की दिशा में हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। हमने कल ये बात सीखी कि हमारे जीवन में यदि श्रेष्ठ विचार होंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। फिर हमने ये भी समझा कि अकेले श्रेष्ठ विचार होने से जीवन श्रेष्ठ बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उन श्रेष्ठ विचारों को अपने आचरण में परिवर्तित करने के लिए और थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न ये है कि यदि विचार हमारे बहुत दृढ़ हो जाएं, तो फिर वे विचार आचरण में परिवर्तित हो जाते हैं। विचारों की दृढ़ता के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग उस प्रकार के श्रोता तो नहीं है जो कि बहुत श्रेष्ठ प्रकार के श्रोता होते हैं, हंस के समान जो सारभूत वस्तु को तुरंत ग्रहण करके और अपने आचरण में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हंस दूध और पानी मिला भी रखा हो तब उसमें से दूध दूध ग्रहण कर लेता है। हम दूसरे प्रकार के श्रोता भी नहीं है जो गाय के समान होते हैं, मध्यम प्रकार के श्रोता होते हैं गाय के समान, जो कि घास फूस खा करके भी अमृत के समान दूध में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम भी जो है इस तरह के श्रोता तो नहीं है कि जो हमें किसी भी तरह के विचार मिल जाएं और हम उन विचारों को श्रेष्ठता में परिवर्तित कर दें। हम तो तीसरे प्रकार के श्रोता हैं, माटी के समान। जैसे कि माटी पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें से सौंधी सौंधी गंध भी आने लगती है और थोड़ा गीलापन भी आ जाता है। फिर बीज बो तो अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन धूप पड़े तो फिर वो सब सूख जाती है। हम उस प्रकार के श्रोता हैं। हम जब तक श्रेष्ठ विचारों को सुनते रहते हैं या कि धर्म और धर्मात्मा के संपर्क में रहते हैं तो थोड़ा सा हमारे जीवन में हमें खुशबू मालूम पड़ने लगती है और थोड़ा भीगापन गीलापन हमारे भावनाओं में आ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर संसार की हवा लगती है तो फिर हम चटक जाते हैं, सूख जाते हैं। अपन को ये अनुभव हमेशा होता है। सब लोग यही कहते हैं कि महाराज जब तक हम आपके पास और किसी भी महाराज के पास जाके बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक तो मन अच्छा रहता है, ऐसा लगने लगता है कि गृहस्थी ऐसे ही है, अपन को अब ऐसा नहीं करना है। और फिर जैसे ही बाहर निकले तो फिर वो सब साफ हो जाता है साहब, फिर वही वही दिखने लगता सब। इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो इतने उत्कृष्ट श्रोता नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी जितनी हमारी क्षमता है तो हम उन विचारों को और अधिक दृढ़ कैसे बनाएं, इसके लिए हमने कल से प्रयास शुरू किया है। और वो है विचारों को बार 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 उनको रिपीट करना, उनकी आवृत्ति करना। क्योंकि कोई भी विचार अगर एक बार में नष्ट हो जाता है तो फिर वो हमें अवसर ही नहीं मिलता उस विचार को अपने जीवन में परिवर्तित करने का। तो हम विचार को बार बार करेंगे, और वो भी वास्तविकता का विचार, जो चीज जैसी है वैसी की वैसी हमें देखना और फिर उसको वैसा ही जानना और उसको वैसा ही अनुभव करना। ये तीनों चीजें एक साथ चलें। हमने कल अनुपेक्षा के बारे में ये बात शुरू की थी कि अनुपेक्षा मुहुर मुहुर चिंतनम, अनुपेक्षा बार बार वास्तविकता का विचार करना। सिर्फ विचार करना नहीं है, वास्तविकता का विचार करना। वास्तविकता को हम देखते हैं, जानते हैं और ठीक हम वैसा ही अनुभव करने लगे। जैसे कि चीजों की वास्तविकता क्या है कि वे नष्ट हो जाती हैं। संबंधों की वास्तविकता क्या है कि वे बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, थोड़ी दूर तक ही जाते हैं, फिर वे संबंध भी छूट जाते हैं। संसार की वास्तविकता क्या है, यहां पर जन्म मरण निरंतर लगा हुआ है। व्यक्ति की अपनी वास्तविकता क्या है, वो अपने सुख दुख को भोगने के लिए अकेला है। फिर ये जो बाहर उसके कांटेक्ट में चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो क्या उसकी हैं? नहीं, वो उससे पृथक हैं। फिर ये जो शरीर है, वो शरीर कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसको कितने भी धुलाओ नहलाओ लेकिन वो फिर ज्यों का त्यों गंदा ही हो जाता है। इस तरह से जो है हम इन चीजों की वास्तविकता का विचार करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो संसार, शरीर और भोग, इन तीनों की वास्तविकता का अगर हमें भान हो जाए तो फिर जो है हमें अपने विचारों में दृढ़ता लाने में बहुत आसानी होती है। इस तरह अपन विचार कर रहे थे कि हम कैसे जो है वास्तविकता का विचार करें पहली बार, और वास्तविकता का विचार करने के बाद उसे निरंतरता दे सकें, उसे कंटिन्यू बनाए रख सकें, ये बहुत आवश्यक है। तो दो चीजें अपन ने सीख ली। पहली बात तो ये कि हमें विचार करना है, दूसरी बात वास्तविकता का विचार करना है, और तीसरी बात उस विचार को निरंतरता देनी है, ताकि वो विचार दिन भर में अगर हम 100 दफे करेंगे तो फिर उसमें दृढ़ता आ जाए। और कल हमने ये भी समझा था कि जैसे हम किसी चीज को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, लोहे को मजबूत करना चाहते हैं, तो बार बार गर्म करें और बार बार ठंडा करें, ये जो टेम्परिंग की प्रोसेस है उससे वो फौलाद के समान हो जाता है। इसी तरह से जो है हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको हम निरंतरता दे दें, उनको हम बार बार रिपीट करें, उनकी आवृत्ति बार बार करें, तो वे विचार भी हमारे भीतर दृढ़ हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि विचारों की दृढ़ता ना हो, विचारों की दृढ़ता है, लेकिन वे विचार हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाते। ऐसे बहुत से विचार हैं जिनकी हमारी दृढ़ता है, जिनके संस्कार हमारे बहुत मजबूत हैं, लेकिन श्रेष्ठ विचारों के संस्कार हमारे मजबूत नहीं है। आत्मा की बात हम सैकड़ों दफे भी सुन लें लेकिन आत्मा की कोई अनुभूति हमारे पास नहीं है। हमें राग द्वेष की जितनी गहरी अनुभूति है अनादिकाल से, जितना हमारा उसका अनुभव है, जैसे अपन समय सारजी जब पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो एकत्व विघत विभक्त आत्म तत्व की चर्चा है वो बहुत दुर्लभ है, ना सुलभा, सबके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन शुद्ध परिचिदानुबुद्धा सबस्य भी काम भोग बंद का, ये बहुत सुलभ है, वो हमारे सुनने में भी आती है, हमारे जानने में भी आती है और हमारे अनुभव में भी आती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो चीज हमारे सुनने जानने और अनुभव में आती है यदि वो हमारा उपयोग हमारा कल्याण नहीं करती है तो हम उसको चेंज कर दें, और जिस चीज से हमारा कल्याण होता है उसे ही देखें, उसे ही जानें और उसी का अनुभव करें। अनुप्रेक्षा का काम यही है, वस्तु की वास्तविकता का। बार बार वो हमारे भीतर चोट करती है कि वास्तविकता तो ये है। जब जब भी कोई भ्रम हमारे सामने आए, हम फौरन जो है उस भ्रम से पार जो वास्तविकता है उसे देख सकें। तो अनुप्रेक्षा एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है, अनुप्रेक्षा एक तरह के चीजों को आर पार देखने की क्षमता है, वो हमारे भीतर डेवलप होती है। अनुप्रेक्षा कहो चाहे बारह भावना कहो, वैराग्य भावना कहो, ऐसा भी कह सकते हैं, वैराग्य भावना भी उसी में शामिल है और बारह भावनाएं भी, वही सब कुछ जो है जिसमें हम वस्तु की वास्तविकता का बार बार विचार करते हैं वो अनुप्रेक्षा। और हमने कल ये भी समझा था, हम रोज जो है इस तरह से उन विचारों को रिपीट करेंगे ताकि वो हमारे भीतर मजबूत हो जाए, और फिर आज का एक विचार हम उसमें ऐड कर देंगे, ये हमारी प्रक्रिया रहेगी रोज की। तो कल हमने ये समझा था कि अनुप्रेक्षा वैराग उत्पन्न कराने वाली है। वैराग क्या चीज है? वैराग का अर्थ ज्यादा कठिन नहीं है, हिंसा रतस्ते ब्रह्म परिग्रह उपयोग वृत्तिर व्रतम, हिंसा झूठ चोरी इत्यादि जो पाप हैं उनसे विरक्त हो जाने का नाम ही व्रत है, वही वास्तव में वैराग्य है। क्योंकि हिंसा झूठ चोरी के माध्यम से हमको राग द्वेष परिणाम होते हैं, राग द्वेष परिणाम से बचने का नाम ही वैराग्य। जो जितना कम राग द्वेष करेगा वो उतना विरक्त कहलाएगा। जिसको चीजों के संपर्क में आने के बाद भी सुख दुख की अनुभूति तो होती है पर वो हर्ष विषाद नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, वो व्यक्ति उतना अधिक वैरागी माना जाएगा। घर छोड़ के अकेले चले जाने वाले को वैरागी अपन कहते हैं, वो भी ठीक है एक हद तक, लेकिन अब अंतरंग में होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम हैं उनको जो जितना जीत लेगा वो उतना वैरागी कहलाएगा। इस राग द्वेष के या कि सुख दुख के बीच समता रखने के लिए और कौन मदद करती है? हमने कल समझा था कि अनुप्रेक्षा वैराग उपावन माई, वो माता के समान है उत्पन्न करने वाली, वैराग को उत्पन्न करने वाली मां के समान है अनुप्रेक्षा, ये भी हमने कल समझा था। सुख दुख में समता अपन कई बार तो रख लेते हैं, कई बार अपन चूक जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि लोग सुख दुख में समता नहीं रख पाते होंगे, कई अवसर पर रख लेते हैं, वो मजबूरी में रखते हों चाहे वो अपने कल्याण की दृष्टि से रखते हों, ये हमें स्वयं अपना देखना पड़ेगा। कई बार अपन बड़ी समता रख लेते, ग्राहक आओ और उन्हें 25 धोती पटकवा लें, जा दिखाओ वा दिखाओ वा दिखाओ, कहना मैंने नहीं है और चलो गए उसके, अब बड़ी समता रखनी पड़ती, चार बातें सुनाने का मन तो होता है उसको कि अब नहीं आई जो है ना, लेकिन अपन समता रखते कि नहीं रखते? ऐसी समता तो कई बार रख लेते हैं अपन, लेकिन वो यहां पर समता काम की नहीं है। हमें हर्ष विषाद के बीच अपने कल्याण की दृष्टि से समता रखनी है, अपने स्वार्थ की दृष्टि से समता तो कई बार रख लेते हैं अपन। हमें अनुपेक्षा ये नहीं सिखाती है, हमें अनुपेक्षा स्वार्थपूर्ण समता रखने की बात नहीं सिखाती है, वो तो हमें राग द्वेष परिणाम संसार में भटकाने वाले हैं, और मैं राग द्वेष परिणाम के बीच समता रखता हूं उससे मेरा कल्याण होगा ऐसा सिखाती है। डॉक्टर के मना करने से कई चीजें अपन नहीं खाते हैं, इसका मतलब हम त्यागी हो गए हैं और कर्मों की निद्रा होने लगी है, ऐसा नहीं है। जब हम अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से किसी चीज को त्याग करते हैं तब हमारे कर्मों की निद्रा होना शुरू होती है, ये दृष्टिकोण है। तो अनुप्रेक्षा जो है सुख दुख के, कल मैंने कहा था कि सुख दुख के बीच समता रखना सिखाती, तो फिर मैं बाद में सोचता रहा कि अपन तो कई बार जो है संसार के बहुत सारे मामलों में समता रख लेते हैं, जहां अब रस्ते से चले जा रहे हैं और कोई बहुत पहलवान किस्म का आदमी है और वो अपन को धक्का दे दे या कि मुक्का मार दे तो अपन समता रखते कि नहीं? नहीं तो लड़ेंगे तब भी झगड़ा हो फिर अपनी हानि हो जाएगी, ऐसी समता तो अपन रख लेते हैं, वो समता नहीं है। हमें विषाद ही नहीं हुआ, अगर किसी ने हमको इस तरह आक्रमण हमारे ऊपर कर भी दिया तब भी हमें विषाद नहीं हुआ। हमें लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, इन सब के बीच अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से मुझे समता रखनी है, इन सबको साम्य भाव से देखना है, ये चीज हमें अनुप्रेक्षा बताती है। जो व्यक्ति बारह भावनाओं का चिंतन करता है या अनुप्रेक्षाओं को भाता है उस व्यक्ति के भीतर ये क्षमता अपने आप आ जाती है। असल में बात ये है कि हमारा जैसे जैसे मोह और मूर्छा कम होती जाती है, वैसे वैसे वास्तविकता का भान होता, या कि जैसे जैसे वास्तविकता का भान होता है वैसे वैसे हमको हमारी मोह और मूर्छा भी दूर हो जाती। यदा यदा समायाती संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे आत्म तत्व का भान होता है, जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति होती चली जाती है, वैसे वैसे विषय सुखों के प्रति अनुराग कम होता जाता है, और जैसे जैसे विषय सुखों के प्रति अनुराग कम होता है वैसे वैसे आत्म तत्व की तरफ रुचि बढ़ती चली जाती है। ये दोनों साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं। एक साथ जैसे ही हम हर्ष विषाद को कम करते हैं वैसे ही हम अपने वास्तविकता की तरफ आते हैं, और जैसे हमें वास्तविकता मालूम पड़ती वैसे हमारा मोह और भ्रम टूटता चला जाता है। जैसे कि कई बहुत सारी घटनाएं हैं, अब कौन सी वाली घटना आपसे कहूं, वो एक साथ तीन चार घटनाएं आ जाती हमारे जब हम ऐसा सोचते हैं तो, अब उसमें से कोई एक और फिर उसमें से भी एकदम उसी समय आने वाली। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के यहां पर एक नौकर काम करने आया, तो वो नौकर देखता था कि ये सेठ जी कभी ज्यादा न हर्षित होते हैं न कभी ज्यादा इनको कोई विषाद घेरता है, ये बड़े शांत नजर आते हैं, कभी दो कड़ी बात भी इनको हमने किसी से कहते नहीं सुनी, इनका जीवन बड़ा अच्छा है, वो देखता था। लेकिन उसके मन में आता था कि ऐसा संभव नहीं है, जब सेठ जी को कोई बहुत बड़ा लाभ होगा तब वो भी हर्षित होते होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि उसने आकर के फौरन खबर दी कि आपको इतना इतना लाभ हुआ। सेठ जी ने कहा ठीक बस इतना ही, और ना उसको कोई गिफ्ट दी, नहीं तो प्रसन्न होकर के कि अरे इतना लाभ की खबर तुमने दी है तो इतना इतना तुम भी ले लो और जरा बाजे बाजे बुलवाओ और आज तो उत्सव मनाओ, मिठाइयां बांटो, इतना लाभ हुआ है। तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने सोचा कि ठीक है इनको तो बहुत पैसे हैं, लाभ होता ही रहता है इनको, इसलिए इनको कोई ज्यादा एक्साइट नहीं हुए, ज्यादा इनको हर्ष नहीं हुआ। अब जब इनको घाटा वाटा होगा जरा लंबा चौड़ा तो हो सकता है कि विषाद में तो ये पड़ेंगे, ऐसा कैसे संभव। लेकिन आश्चर्य तब उसको हुआ कि जब बहुत बड़ा घाटा होने के बाद भी सेठ जी उतने ही प्रसन्न चित, और उन्होंने कहा ठीक है। तब उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसने जाकर के सेठ जी से पूछा कि हम तो इतने दिन से आपके यहां पर हैं, क्या आपको इस सब संपदा के आने और चले जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब सेठ जी ने मालूम क्या कहा, बोले मैं तो ये सोचता रहता हूं कि मेरे से पहले इस संपत्ति का मेरे पिता अपने को मालिक माना करते थे और अब वो नहीं है, और मैं अपने को अगर मालिक मानता फिरूं तो मेरे बाद आने वाला कोई और मेरी इस संपत्ति को अपना मालिक मानेगा, मैं अपनी संपत्ति का अपने आप को मालिक ही नहीं मानता, इसलिए जब मैं उसका मालिक ही नहीं हूं मैं तो सिर्फ उसका रखवाला हूं, मैं रखवाली करता हूं, कभी संपत्ति कम हो जाती है तो भी मैं क्या करूं, कभी ज्यादा होती है तो भी मैं करूं, मुझे तो जब ज्यादा हो जाती है तो मुझे सुरक्षा करना पड़ती है इसलिए जरा दिक्कत सी मालूम पड़ती है, जब कम हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ती। दोनों स्थितियों में जैसे कि तोरणमल जी साहब का उदाहरण आता है कि उनके घर में कोई चोर घुसा था और वो उनके सामान लेके जब जाने लगा तो पोटली अंधेरी रात में उनने स्वयं अपने हाथ से रख करके और उसको भेज दिया था, तब उसकी मां ने कहा कि ये सामान कहां से चुरा लाए, उस पंडित के यहां से, दिया वापस। तो पंडित जी के यहां वो वापस देने आया था तो उनने मालूम क्या कहा कि भैया अब तो उपकार करो तुमने हमारो, कि परिग्रह हम वैसे ही कम करना चाहते थे और अब तुम वापस मिलने लगाओ, हमने तुम्हें दिया ये मान करके तुम ही रखो। हम इस तरह से जो है कि अपने जीवन में ऐसा विचार कर पाते हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है, हमारी चीजें अगर एक कम हो जाती है तो हमारी अनुभूति कैसी होती है, एक चीज हमें बढ़ जाती है तो हमारी अनुभूति कैसी होती है, ये देखना इससे मालूम पड़ेगा संबंध कितनी देर के हैं, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। आज हम इस बात पर विचार करते हैं। अनुप्रेक्षा जहां कल हमें यह सिखाती थी कि वस्तुएं यहां पर बहुत क्षणभंगुर हैं, जो भी पर्याय है वो भी क्षणभंगुर है, चाहे वो जीव की पर्याय हो, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो। पर्याय तो एक के बाद ही एक होती है, एक के नष्ट होने पर ही दूसरी उत्पन्न होती है। उसके पीछे जो द्रव वो शाश्वत छिपा हुआ है उसे देखना चाहिए। आज अनुपेक्षा हमें दूसरा विचार करने के लिए कह रही है कि इस संसार में हम जो भी चीजों से और व्यक्ति से जो संबंध बनाते हैं, उन संबंधों को हमें गौर से देख लेना चाहिए। वे संबंध कितनी दूर तक चलते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या। हम सोचते हैं कि हमारे संबंध शाश्वत रहेंगे, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारा परिवार है। इस तरह हम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हम चीजों के बारे में, ये चीज मेरी है, ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। इस तरह से हम इन चीजों से अपने संबंध जोड़ लेते हैं। हालांकि ये चीजें कभी हमें अपना नहीं मानती हैं। अच्छा बताओ, कभी किसी कार ने ये कहा, कोई व्यक्ति उसके पास पहुंचे और कार का दरवाजा खोले और कार कहे, मिस्टर आप कौन है, आप हमारे मालिक नहीं है, हमारे मालिक तो वो है। ऐसा तो कभी नहीं कहती। लेकिन हम अपनी मालिकियत उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। हम अपना संबंध ये वन साइडेड रिलेशन कहलाते हैं। व्यक्ति के साथ बोथ साइडेड रिलेशन भी हो सकते हैं। हम थोड़ा सा विचार कर लें इन पर, दोनों तरह से रिश्ते हो सकते हैं। हम भी व्यक्ति को अपना मानते हैं, दूसरा व्यक्ति भी हमें अपना मान लेता है। इस तरह से हम संबंध बनाते हैं। फिर इन संबंधों के चलते संबंध बुरे नहीं होते। संबंधों में जो हमारा राग द्वेष है वो हमको तकलीफ पहुंचाता है। हम संबंधों में एक भ्रम डेवलप कर लेते हैं कि ये संबंध शाश्वत है, ये संबंध हमेशा चलेंगे और इन संबंधों के होते मैं सुरक्षित हूं। व्यक्ति कभी भी अशरण नहीं होना चाहता। व्यक्ति यहां पर शरण खोजता है, वो उसको लगता है कि शरण से मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे कोई मरण से बचा लेगा, मुझे इस लोक में जो भी भय आने वाले हैं उससे मुझे बचा लेगा, परलोक के भय से बचा लेगा। 7 प्रकार के भय हैं, उन सभी भयों से बचने के लिए व्यक्ति शरण खोजता है, अशरण होना नहीं चाहता। और अनुप्रेक्षा हमें सलाह दे रही है कि एक बार जरा अशरण होके तो देखो, किस किस की शरण लोगे, और फिर जिसकी शरण लेते हो वो बचा पाता है तुम्हें, वो सुरक्षा दे पाता है, वो निर्भय कर पाता है क्या? नहीं। शरण लेकर के जिन चीजों की हम वस्तु और व्यक्ति की शरण लेते हैं वो हमें कभी निर्भय नहीं कर पाती हैं और हम कभी उनसे सुरक्षा नहीं पा पाते हैं। एक माँ अपने बेटे के दुख से दुखी होकर अपने प्राण देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन अपने बेटे के दुख को एक डिग्री भी कम नहीं कर सकती। कर सकता है क्या कोई? एक माँ अपने बेटे से अपेक्षा रख सकती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मुझे कभी कोई तकलीफ होगी तो उसको दूर करेगा। ठीक है, इतनी अपेक्षा तो रख सकती है, लेकिन इससे ज्यादा अपेक्षा रखना कि जब मेरा मरण होगा तो ये मुझे सांसें दे देगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये लिमिटेशंस हैं हमारे संबंधों की। हम कितनी अपेक्षाएं रख लेते हैं। क्या कोई किसी व्यक्ति को कितना भी उसका अपना निकट का क्यों ना हो, सगा क्यों ना हो, क्या उसे 2 सांसें दे सकता है? सिकंदर आखिरी समय पर लोगों से पूरा राज देकर के 2 सांसें मांगते रहे थे कि मां आने वाली है, बस थोड़ी देर में, 2-5 मिनट की देरी है, सारे हकीम वैद्य खड़े हैं, आप में से कोई मेरा पूरा राज्य ले लो जिसके लिए मैं जिंदगी भर प्राप्त करने में लगा चुका हूं अपना समय। और अब एक क्षण में वो कह रहा है कि 1 सांस 2 सांस के लिए पूरा राज्य दे सकता हूं। क्या कोई सांस दे पाया उसके लिए? नहीं दे सकता। ये अपन जानते हैं, लेकिन ये विचार जो है अपना थोड़ी देर तो आता है, लगातार आना चाहिए। जब भी हमारा बेटा और हमारी कोई बात ना माने और जग से खेलने दौड़ जाए तो हमारा मन कैसा हो जाता है कि हम ही ने पाल वो उसके बड़ा किया, हमारी बात नहीं मानता, ऐसा संक्लेश हमारे भीतर होने लगता। क्यों होने लगता संक्लेश? हम क्यों इतनी अपेक्षा रखें उससे? ये क्यों नहीं सीख लेते हम कि हमें अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें जो कुछ भी करना है वो अपने आप करना है। हमें आशरण अपेक्षा स्वावलंबी बनाती है। यहां कोई हमारा नहीं है ऐसा कहकर के हम सबसे अलग थलग खड़े हो जाए ये नहीं सिखाती है अनुपेक्षा, बल्कि हम सबके बीच रह करके भी अपने को अकेला ही माने ये सिखाती है अनुपेक्षा। हमें स्वावलंबन सिखाती है। हम कहते ना कि हम तो बेटे तुम्हें तब तक सलाह दे रहे हैं जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। सही संबंध तो यही है, जब हम हर व्यक्ति को उसकी अपनी वास्तविकता से परिचय करा के स्वावलंबी बना देते हैं। होता अक्सर यह है कि हम दूसरे को अपने मातहत या अपनी बैशाखी सौंप करके और अपने अनुसार चलाते हैं। संक्लेश का कारण यही है, ना वो हमारी शरण में खुश रह पाता है, ना हम उसकी शरण पाकर के सुरक्षा पा पाते हैं और एक भ्रम में हम जीते चले जाते हैं। हमें ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। अगर हम अशरण अनुप्रेक्षा को, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यों समझो मन में, अपने मन ही मन में इस तरह का विचार क्यों नहीं आता है? जब भी जिससे हमारा संबंध है उससे हमारे संबंधों का वियोग होता है, तब क्यों नहीं हमारे भीतर संक्लेश के स्थान पर ऐसा विचार आता है कि संयोग जब तक था तब तक मैंने उसका लाभ लिया, अब इसके वियोग में मैं अपने आप को इतना स्वावलंबी बना लूं कि मैं उसके अभाव में भी अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से जी सकूं। उसमें लिखा है एक कविता बहुत बड़ी किसी विदेशी राइटर, इंग्लिश राइटर की है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं पूरा जीवन ठीक ठीक जीऊं, लेकिन जब अंत समय में और जिन्हें मैंने जन्म दिया है उनके पंख निकल आए और वे अपना नीड बनाने हमसे भी दूर उड़ करके चले जाएं, तब इस खाली घर को हे परमात्मा मैं तुम्हारी उपस्थिति से भर करके और अपने को अकेला ना समझूं और तुम ही मेरे साथ हो ऐसा मान करके शेष जीवन व्यतीत कर दूं। वास्तव में शरण वो है जो हमें संसार में जिन जिन को हमने शरण माना था वे भी हमें छोड़ करके चले जाते हैं, तब कौन हमारे लिए शरण है, कौन हमारी सहायता और सुरक्षा करने वाला है? हमारा अपना धर्म, हमारी अपनी आत्मा और हमारा अपना परमात्म स्वरूप पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरण हो जाता है। वास्तव में हम संसार में शरण खोजते हैं, हमें उससे अनुभव होना चाहिए कि वो कहां तक है, वो कितनी दूर तक है, उस शरण की अपनी क्या सीमा है, ये हम विचार करें। और वास्तविक शरण क्या है इसका हम विचार करें। तो ये विचार निरंतर हमारे भीतर अगर आता है तब फिर देखें कि हमें संक्लेश और या कि बहुत हर्ष या विषाद, ये दोनों ही कम होते चले जाएंगे। हम सोचते हैं कि अशरण अनुपेक्षा को हमने कई बार भाया होगा, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती विरियां जीव को कौन राखना है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसको हम रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? हम पर जब कोई दुख टूटता है तब हम दलबल देवी देवता सबके चरणों में माथा झुकाने चले जाते हैं, चाहे जिसके चरणों में। थोड़ी सी भी विपत्ति आती है हम शरण खोजते हैं, जहां शरण नहीं है वहां शरण खोजते हैं, सचमुच जहां शरण है वहां तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें इस अशरण अनुप्रेक्षा से इतनी ही सलाह लेनी चाहिए, सीता जी का वियोग हुआ रामचंद्र जी को, कहां शरण मिली, कौन ने शरण दे दी बताओ? और जब सीता जी को ही रामचंद्र जी ने एक दिन कृतांत वक्र को सौंप करके और जंगल में छुड़वा दिया, तब सीता जी को किसने शरण दी थी? हम इतनी तो किस्सा कहानी पढ़ते हैं पुरानी, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं, इसके बाद भी हम उससे कोई सलाह नहीं ले पाते। अनुप्रेक्षा हमें ऐसी ही सलाह देती है, ऐसे आड़े समय पर सलाह देती है जब हम विपत्ति से घिर जाते हैं, जब जहां हमने शरण मानी थी वहां से भी हम अशरण हो जाते हैं, तब फिर वो हमें याद दिलाती है कि इन सबको तुमने शरण माना था पर सच्ची नहीं था, वो तुम्हारा भ्रम था, अब तो सचेत हो जाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारे ही भीतर है, ये खोज लो। शाश्वत शरण अगर कहीं है तो वो हमारे अपने अंदर हमारी आत्मा में ही है। इस तरह का अगर हम विचार निरंतर बनाए रखेंगे और उस विचार की छाया हमारे जीवन में आने लगेगी, हम किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो ही जो है इस अशरण अनुप्रेक्षा की अनुभूति हम अपने जीवन में कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आचरण के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कल फिर अपन, कल तो संडे है तो कल तो सुबह ठाट बाट से पूजा करनी चाहिए, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। वो धीरे धीरे हम लोग सामूहिक पूजन को बंद करते जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि संडे के दिन फिर अपन दोपहर में बैठेंगे और 2:30 बजे फिर चर्चा करेंगे। कल सुबह तो सब लोग प्रवचन हो रहे हैं, इसलिए तो अपन आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा, मुझे इस चीज का बहुत वो लगता है, पूजा हो रही है तो पूजा तो जल्दी 5 मिनट में कर लो, जल्दी तो करवा अभिषेक और पूजा जल्दी कर लो, महाराज के प्रवचन सुनने। प्रवचन भी तो वही है, धर्म ध्यान है, ऐसा अपने को, मुझे तो ऐसा लगने लगता। अब चूंकि ठीक है समय नहीं रहता है, अपन लोग को एडजस्ट करना पड़ता, पर सचमुच देखा जाए तो वो चीजें भी हमारे मन को निर्मलता तो देती है, उतनी देर के लिए हमको निश्चिंता तो हो जाती है। ठाट बाट से बैठते हैं तो कल सुबह, और ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ वो करने वाले पूजा और कर लेंगे, अपन को क्या करना है, 20-25-50 लोग, क्यों नहीं, हम जब अपनी पूजा अलग अलग करेंगे तो एक जगह आके बैठ के क्यों नहीं कर सकते, करते तो सब इंडिविजुअल ही है अपनी अपनी, लेकिन 50 लोग बैठ के अपनी अपनी भी कर सकते ना, एक अकेले बैठ करके भी अपनी की जा सकती है। आज ये चेतना खत्म होती जा रही, सामूहिक पूजन और सामूहिक स्वाध्याय और सामूहिक ध्यान, सामायिक भी समूह में बैठ करके। लेकिन आचार्य महाराज की वो बात आज मुझे अचानक याद आती है, और इस अशरण अनुप्रेक्षा के समय पर हमें ये चीज जरूर से कोट कर देनी चाहिए। वो संस्मरण है सन 1987 का, जब यहीं जब पहली बार आचार्य महाराज ने नैनागिर में आरिका माता जी को दीक्षाएं दी थी। इसके पहले 87 के पहले नहीं हुई थी, मुनि महाराज और एलक जी चुड़लक जी तो बने थे, पर 87 में जब पंचकरणक हुआ, गजरथ चला नैनागिर में, तब उस दिन अब मैंने अपने सामने आचार्य महाराज के संग में और 3-4 साधु देखे हैं, और मेरे जीवन में मैंने देखा कि एक साथ जो है 23 महाराज पहले से, और 23 और बन गए, 12 चुड़लक जी और 11 माता जी, 46 पिछी हो गई। तो फिर मैंने एकदम आचार्य को सुबह सुबह कहा कि महाराज आज तो हम लोगों के लिए, आप सबके लिए तो बहुत सारी बातें बताते हैं, आज हम लोग इतने सारे बैठे हैं सब एक साथ, कहां कहां से कौन आया है लेकिन सब एक साथ बैठ गए, आप हम लोगों के लिए कुछ कहिए। तब उन्होंने दो बातें कही थी, वो दो बातें आज अपन इस आचरण अनुप्रेक्षा के बारे में जब विचार कर रहे हैं तो उन दो चीजों का विचार करें। उन्होंने मालूम क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जब दिन भर अपना धर्म ध्यान करो तो ये मान के करना कि ये सब मेरे साधर्मी हैं, इनके धर्म ध्यान में भी मुझे सहयोगी बनना है, इनके सुख दुख का भी मुझे ध्यान रखना है, और जब अपने सामायिक में लीन हो तो विचार करना यहां कोई किसी का नहीं है, मेरे अपने परिणामों का, सुख दुख का कर्ता और भोक्ता और स्वामी मैं स्वयं हूं। यही है, जब हम सबके बीच हैं तो सबको क्या मान के चल रहे हैं, सब हमारे अपने हैं, ये व्यवहार है, और जब हम अपने आत्म ध्यान में लीन हैं तो ये वैसा नहीं है, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम अपने आत्म ध्यान में लीन हैं तब हम विचार कर रहे हैं कि सचमुच हमने वास्तविकता का अनुभव कर लिया, यहां पर जितने भी संबंध हैं वो बहुत बाहरी हैं, हमें अपने परिणाम तो स्वयं ही संभालना पड़ेंगे, इसलिए कोई किसी का नहीं है, ऐसा कहना, ये आत्मस्थ होकर के कहना, ऐसा नहीं किसी राग द्वेष से प्रेरित होकर तो हम बहुत जल्दी कह देते हैं। तो शरण, हमने जो बाहर संबंध बनाए हैं उनको हम ठीक ढंग से जिए, ये हमारा व्यवहार है, और हम उन संबंधों की वास्तविकता अपने भीतर महसूस करते रहें कि इनमें शरण नहीं खोजना है, इनसे तो संबंध डेवलप किए हैं, सबको अपना मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपना तो मैं स्वयं ही हूं, अपने परिणामों को मुझे स्वयं संभालना पड़ेगा। इस तरह अगर हम विचार करें तो यह अनुप्रेक्षा हमारे जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है। इसी भावना के साथ में बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मिथ्या तम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, बालू से बतानी है, शाहो द्रव्य जान देखो, बंद वेद बान देखो, सफर पहचान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए देखो, जीवों के जताए देखो, सताए वे को भव्य उर आनी है।
नमो सदा देत मोंदो मिदिन वाणी भारती को नको दिन रे जो तेरा चरणा जगे सो पावे सुख चैन मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता दिमा जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाले पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाले।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, पिछले दिनों हम लगातार अपने परिणामों की निर्मलता के लिए हमें कैसा विचार करना चाहिए, हमें किस दिशा में अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, इस बारे में सीख रहे हैं। दो ही काम अगर देखा जाए तो हमारे जिम्मे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, कि एक तो हम अपने बुरे संस्कारों को तोड़ें और दूसरा हम अपने अच्छे संस्कारों को निरंतर बढ़ाते हैं। इतना ही काम हमें करना है और मजा यह है कि एक काम करने जाओ तो दोनों काम हो जाते हैं। यदि हम पुराने बुरे संस्कारों को तोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो बुरे संस्कार तो टूटते ही हैं, साथ साथ अच्छे संस्कार भी प्रबल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अच्छे संस्कार प्रबल करना चाहें तो अच्छे संस्कार भी प्रबल होते हैं और बुरे संस्कार टूटते हैं, दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है, हमें पुरुषार्थ की दिशा तय करने में मदद करती है। पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं लेकिन किस दिशा में करना है पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा बहुत सही दिशा में होता है, गलत दिशा में ज्यादा हो जाता है। संस्कार वश हो जाता है, अज्ञानता वश हो जाता, प्रमाद वश भी हो जाता, तीनों चीजें हमारे साथ हैं। बहुत सारे अपराध हम संस्कार वश करते हैं, बहुत सारे अपराध हमारे अपने मोह की वजह से होते हैं, बहुत सारे अपराध हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से। हम नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से और हमारे जीवन में क्या मुश्किल हम खड़ी कर लेंगे, हम स्वयं भी नहीं जान पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि वे जो कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा उन्हें, अज्ञानता बहुत है। हम लोगों को भी कर्म के बारे में अज्ञानता है, मोह तो है कि और प्रमाद जिसको कहते हैं, प्रमाद भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अपने हित के लिए चिंतित नहीं होना कुशलेशु अनादरः, जिसमें हमारी कुशलता है उसके प्रति उत्साह नहीं होना, ये भी तो एक संस्कारों को सुधारने में बाधक बनने वाली चीज है। हम समझते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए लेकिन हम आलस कर जाते हैं। अच्छा करने में आलस भी हमारे लिए
अच्छा नहीं करने देती है। ये कुछ बातें जो कि हम पिछले दिनों से लगातार समझ रहे हैं। कल भी हमने एक बात समझी थी, वो ये थी कि डिकलराइजेशन करना ये अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है। हम बहुत सारे रंग
अपने ऊपर चढ़ा करके रखते हैं और निरंतर एक न एक रंग हमारे ऊपर चढ़ता ही जाता है, अपनी ही इच्छाओं का, अपनी ही कामनाओं का। क्या करें उस रंग को, जैसे कि रंगरेज कपड़ों पर रंगता रंग भी करता है और कभी कभी रंग को हटाता भी है, तो ठीक इसी तरह से हम भी जो है एक विशेष प्रकार का रंग, वो वीतरागता का रंग है। अभी तो हम राग के ही रंग में रंगे हुए हैं, द्वेष के रंग में रंगे हुए हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि राग द्वेष के रंग को छुड़ा दें? तो जो हमारा वीतराग का रंग है, वो रंग नहीं कहना चाहिए, वो तो कलरलेस वाली स्थिति है। पानी का कोई रंग नहीं होता, ठीक वही स्थिति हमारी प्राप्त हो सकती है। कषायों के रंग को हटाने का काम अगर कोई करता है तो वो अनुप्रेक्षा करती है, क्योंकि हमारे संसार में दुख का कारण या कि हमारे भ्रमण का कारण कोई है तो वो हमारी कषायें ही हैं। हमारी अस्थिरता का कारण भी हमारी कषायें हैं। जैसे कि पानी में लहरें उठती हैं तो क्या होता है, ठीक ठीक अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता और रंग डला हो उसमें, गंदा पानी हो तब भी अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। ठीक इसी तरह से हमें अपने आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता अगर कामना की, कामना का कोई ना कोई रंग उसके भीतर कषाय का रंग हो और मन वचन काय की प्रवृत्ति की तरंग हो, तो फिर वाइब्रेट होगा पूरा का पूरा जीवन। जैसे तरंगें उठती हैं तो हम अपना चेहरा खुद नहीं देख पाते, शांत जल हो और निर्मल जल हो तो अपना चेहरा आसानी से देख लेते हैं। इसी तरह जो है अगर कषायें मंद हो और मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ हो, सदी हुई हो, तब फिर हमें थोड़ा सा अपने आत्मा का स्पर्श या आत्मा का भान करने की गुंजाइश निकलती है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो कल हमने ये चीज समझी थी कि हमें रंग भी हटाना है और तरंग भी हटाना है। रंग कषाय का है हमारे ऊपर और तरंग हमारे मन में मन वचन काय की क्रियाओं के जो उद्यम हम करते हैं उसकी तरंग हमेशा उठती रहती, ये करूं, ऐसा सोचूं, ऐसा बोलूं, ये सब तरंगें हैं। और अगर हम इनमें उलझी रहते हैं तो हमें अपने आत्मा के बारे में जानने की फुर्सत नहीं रहती। तो अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए, अपने स्वभाव के बारे में, या ऐसा कह लीजिए अपनी वास्तविकता के बारे में, एक्चुअली हम हैं क्या, हमें क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा हमारे पास गुंजाइश तो होनी चाहिए, उस तो बहुत आवश्यक है। अनुपेक्षा हमें यही सिखाती है, हम अपने जीवन की यात्रा को किस तरह से करें। जैसे कोई व्यक्ति किसी रथ में बैठा हुआ हो, वो अपने रथ को कैसे दौड़ाए रास्ते पर और अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे, तो कहते हैं वो अपने घोड़ों को ठीक ठीक रखे, बलगाएं संभाल कर रखे, नहीं तो रथ कहीं टकरा जाएगा तो उसमें बैठा हुआ जो रथी है उसको तो चोट पहुंचेगी। इसी तरह तो ये रथ है हमारा, रथ हमारा शरीर है, हमारे घोड़े पांचों इंद्रियां हैं, बलगाएं हमारा मन है। अब चेतना उसमें बैठी हुई है, ये रथ है, इस रथ में चेतना बैठी है, शरीर के रथ में चेतना बैठी है और घोड़े जुते हैं इंद्रियों के और बलगाएं हैं मन के हाथ में। अब जिस चेतना का जितना बढ़िया कमांड होगा, जितना बढ़िया सारथी होगा, सारथी कौन है उस रथ का, सारथी तो हमारा विवेक है। वो विवेक कहां से आता है, वो अनुप्रेक्षा हमें देती है। और अगर वो अनुप्रेक्षा के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें तो हम अपने घोड़ों को, इंद्रियों के घोड़ों को और उसकी जो मन की वलगाएं हैं उनको ठीक ठीक दिशा दे पाएंगे और फिर आसानी से हमारा ये शरीर भी फिर बाधक नहीं बनेगा, वो तो दौड़ता चला जाएगा रथ की तरह आगे और हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस तरह यदि हम एक प्रतीकात्मक ढंग से भी अपने जीवन को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं अनुप्रेक्षा विवेक की तरह हमें कैसे जीना है, ये स्टाइल बताती है। जीते सब हैं, पशु भी जीता है, एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव भी अपना जीवन यापन कर लेता है, उसके भी चारों संज्ञाएं हैं, आहार भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा उसके भी लगी हुई है और अपने भी हैं, लेकिन उन संज्ञाओं के बीच भी अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर लेना ये तो मनुष्य के बूते की बात है। और ऐसा मनुष्य जिसके पास अभ्यास के द्वारा विवेक उसने अपना जागृत कर लिया है, अनुप्रेक्षा के द्वारा, अनुप्रेक्षा हमारे विवेक को जागृत करती है, हमें ठीक ठीक दिशा में अपने इंद्रिय मन और शरीर को ठीक दिशा में गति देने के लिए ये अभ्यास अनुप्रेक्षा का बहुत सहयोगी बनता है। ऐसी अनुप्रेक्षाओं को हम समझ रहे हैं। आज हमने 6 अनुप्रेक्षाएं तो समझ ली हैं। यहाँ संसार में जो कुछ हमें शाश्वत दिखाई पड़ता है वही एक दिन नष्ट हो जाता है, पर्यायें नष्ट होती हैं, उसके पीछे छिपा हुआ द्रव्य वो तो शाश्वत है। ऐसी दृष्टि देने वाली अनित अनुप्रेक्षा, यहाँ संसार में हम संबंध बनाते हैं, वे संबंध कुछ थोड़े समय के लिए ही हैं, हम उन संबंधों का लाभ लें लेकिन उन संबंधों में आसक्त ना हो और संबंधों से ज्यादा अपेक्षा ना रखें कि ये हमारे संबंध हमारा कुछ काम कर पाएंगे। वास्तव में तो यहाँ संसार में कोई शरण नहीं है, शरण अगर है तो देव गुरु शास्त्र की है, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए वे ही हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं। इस जीवन में नहीं, हमेशा हम उनको अपने भीतर रख सकते हैं। बाकी जो शरण लेते हैं यहाँ वो तो छूट जाती है, पीछे थोड़ी दूर तक जाती है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जाता है तो मरघट तक जाता, उसके बाद तो कोई साथ में नहीं जाता, ऐसा हमने विचार किया। और ऐसा विचार करके अपने संबंधों को एक बार फिर से गौर से देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंध मुझे आसक्त करते हो। संबंध उपयोग के लिए हैं, अपने जीवन के लिए। अभी किसी ने मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें मैं सोचता हूँ कि यही बात उनके समझ में नहीं आई है कि शरीर खाता नहीं है और आत्मा खाती नहीं है तो फिर कौन खाता है। ये भी इसी तरह की चीज है कि आखिर हम क्या करें, हमारे संबंध तो हैं, हमारा शरीर से संबंध है, हमारे अपने परिवारजनों से है, हमारे अपने समाज से है, देश से है, सबसे संबंध है, तो क्या ये है नहीं संबंध। कहते यही समझने की चीज है, संबंध होते हुए भी नहीं है, है भी और नहीं भी है। ये शरीर मेरा है भी और नहीं भी है। ये शरीर मेरा है क्योंकि मैंने अपने कर्मों के द्वारा इसे उपार्जित किया है, इसलिए मेरा ही है, ये मेरा ही अपराध है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जब अपने स्वभाव में होता हूं तब फिर मुझे शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, जब मैं अपनी विकारी अवस्था में हूं तब मुझे शरीर को अपना तो मानना पड़ेगा, और फिर शरीर के आश्रित जितनी चीजें हैं वो सब भी मुझे अपनी ही मानना पड़ेंगी, उन सब के लिए सुरक्षा देने के लिए, उन सब का सदुपयोग करने के लिए वे मेरी, पर वास्तव में देखा जाए तो मेरी नहीं है, मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से है। इसी तरह शरीर मेरा नहीं है, शरीर खाता भी नहीं है, न चेतना खाती है, दोनों अपनी शुद्ध अवस्था में होते, न पुद्गल अपनी शुद्ध अवस्था में कोई ऐसा व्यवहार करता है, न चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में ऐसा व्यवहार, लेकिन दोनों की मिली जुली अवस्था है, संयोगी अवस्था है, दोनों एक दूसरे से विकृत होकर के मिल गए हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार आता है कि भाई शरीर खाता है या आत्मा भी खाती, व्यवहार से तो आत्मा भी खाएगी, नहीं तो कौन खाएगा, मुर्दा थोड़ी खाता है, तो मुर्दा मुर्दे को खिलाओ तो कैसे, उसमें चेतना है तभी तो वो खाता है, तो फिर कहते चेतना खाती है तो सिद्ध भगवान खावे, यदि सिद्ध भगवान भी नहीं खाते। इसके लिए टूडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किसी एक के मत्थे मत ठोको, न शरीर का है ना आत्मा अकेले का है, दोनों का मिला जुला है, जैसे कि किसी के एक बेटा हो गए तो मुझे बताओ कि वो बेटा किसका है, वो अपनी माँ का है या पिता का है। तो अगर नाना के घर में है और नाना से पूछो कि जो को आए तुम, हमारी मोड़ी को लड़का आए, वो तो यही कहेंगे हमारी बेटी का बेटा है ये, और उधर जाकर के दादा से पूछो कि कौन है ये, हमारे लड़के का लड़का है ये। अच्छा, तो दोनों झूठ कह रहे हैं क्या? नहीं, दोनों ठीक कह रहे हैं, है वास्तव में तो दोनों का ही, लेकिन जहां जैसी विवक्षा है, दादा से पूछोगे तो अपने बेटे का कहेंगे और उसके नाना से पूछोगे तो अपनी बेटी का कहेंगे, है किसका, अकेले बेटी का है या बेटे का है, दोनों का है। तो अगर कोई ये पूछे आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से पूछेंगे तो कहेंगे कि आत्मा आत्मा का नहीं है, वो तो पर्याय का, वो तो शरीर का धर्म है, खाना पीना शरीर का धर्म। शुद्ध निश्चय से पूछोगे तो कुछ भी नहीं बैठेगा, और व्यवहार से पूछोगे तो व्यवहार तो कहेगा कि हाँ भैया आत्मा का, आत्मा भी खाती है और शरीर भी खाता, दोनों की संयोगी अवस्था है, इसलिए ऐसा व्यवहार। यही बात यहां पर है, जो कुछ भी हमें यहां पर संसार में चारों गतियों में भ्रमण करने का दुख है, वो हमारा अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी अज्ञानता की वजह से ये दुख हमें यहां उठाना पड़ रहे हैं। यही तो संसार अनुपरीक्षा हमें बताती है कि संसार में भ्रमण तो है, लेकिन वो भ्रमण का कारण क्या है। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सर्विधि संसार आसारा या में सुख ना ही लगा रहा, बिल्कुल ठीक बात है। चारों गतियों में कष्ट भरे हुए हैं, पांच परिवर्तन करना पड़ते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन, और यहां पर सार तो कुछ भी नहीं है, सब असार है, तो क्या करें, संसार को उठा के एक तरफी फेंक दे, वहीं तो रहना पड़ेगा संसार में। तो कहते ये इससे क्या संदेश लेना, संदेश ये लेना कि इसमें चारों गति और पंच परावर्तन क्यों करना पड़ते हैं, इसमें से कुछ सार मिलता क्यों नहीं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं इसलिए इसमें से सार नहीं मिलता मुझे, और मैं अगर ज्ञानी हो जाऊं तो चारों गतियां मुझे परेशान नहीं कर सकती, ना पंच परावर्तन मुझे परेशान कर सकते, सम्यक दृष्टि को पंच परावर्तन नष्ट होकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता, उसके बाद तो नियम से वो मोक्ष जाएगी जाएगा, इतना काम तो सम्यक दर्शन के द्वारा हो जाए। तो ये चीज उसमें समझने की, संसार अनुपेक्षा में ये चीज समझने की है कि भाई जब सब यहां पर आसार है तो मेरा फर्ज क्या है, मैं जाग जाऊं, मैं अपने विवेक को जागृत कर लूं और इसमें इस संसार से बचने के लिए उपाय कर लूं, और बचने का उपाय यही है कि मैं अगर विवेक जागृत कर लूं तो बच ही जाऊंगा, ऐसी ये संसार अनुप्रेक्षा है। और फिर एकत्व और अन्यत्व दोनों भावनाएं हमने भाई हैं कि मैं क्या हूं, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस, मेरी अपनी स्वाधीनता, मैं कितना परावलंबी हो जाता हूँ, छोटी छोटी चीजों के प्रति मैं अपनी स्वाधीनता छोड़ देता हूँ, नहीं मैं सुख दुख के भोगने में स्वाधीन हूँ, मैं चाहूँ तो सुख भोगूं, मैं चाहूँ तो दुखी होता रहूँ, और मैं चाहूँ तो इस संसार के सुख दुख से पार होकर के अपने आत्मा का आनंद भी लेना चाहूँ तो मैं इतना सक्षम हूँ। ये एकत्व अनुप्रेक्षा मुझे सिखाती है, और अन्यत्व अनुप्रेक्षा क्या सिखाती है कि जो पर पदार्थ हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, व्यर्थ भ्रमित होते हो, पर को अपना बनाने की चेष्टा करते हो, बनते हैं ही नहीं, और तुम जब उनको अपना नहीं बना पाते तो दुखी होते हो, जब थोड़ा बहुत अपना बना लेते हो भ्रमवश तो अहंकार कर लेते हो कि देखा मेरे पास इतनी चीजें, और कल के दिन वे छिन जाती हैं तो दुखी हो जाते कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकेला रह गया। तो ऐसा अन्यत्व जो है पहले से ही मान के रखो ना कि ये पृथक है, सो पृथक ही है, ऐसी सलाह अन्यत्व अनुपेक्षा देती है। और अन्यत्व अनुपेक्षा सिखाती है कि सबके साथ तो रहो लेकिन सब पर अपनी जिम्मेदारी मत डालो, क्योंकि पर तो पर है, जिम्मेदारी अपने हाथ में रखो, हाथी पर तो बैठो लेकिन अंकुश अपने हाथ में रखो, घोड़े पर तो रख बैठो लेकिन बलगाएं अपने हाथ में रखो, ऐसा ना हो कि खाली छोड़ दिया, बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठोगे तो नष्ट हो जाओ। ठीक यही स्थिति अन्यत्व अनुप्रेक्षा के साथ कि ठीक है, जितना विस्तार तुमने किया है वो पर है सब, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा मान करके जीने वाला ही वास्तव में चीजों का उपयोग कर पाता है, वरना जो चीजों में जितना गाफिल होगा, जितना आशक्त होगा, वो चीजों का आनंद नहीं ले पाता है, उसकी आशक्ति उसे दुख ही देती है। अहंकार और संक्लेश दोनों वस्तुओं से आशक्ति के कारण होते हैं, इसलिए अन्यत्व अनुपेक्षा। शरीर के बारे में भी हमने समझा था कि शरीर का उपयोग कर ले हम, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। हम उस शरीर को धर्म ध्यान में लगाएंगे तो हमारा शरीर भी सार्थक हो जाएगा, और अगर हम विषय कषाय में शरीर को लगा देंगे तो हमारे आत्मा का पतन होगा। फायदे का तो सौदा यह है कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को भी और धर्म ध्यान में लगा दिया जाए। इतना हमने कल अनुप्रेक्षा से सीखा। आश्रय अनुप्रेक्षा भी इसी सबसे मिली जुली चीज है। आश्रय के मायने होता है कर्मों का आत्मा में आना। कर्म आत्मा में हमारे मन वचन काय की क्रिया के द्वारा आते हैं, और कर्म आत्मा से बंधते हमारी अज्ञानता और हमारे मोह की वजह से, हमारी कषायों की वजह से। अज्ञानता कहो, मोह कहो, कषाय कहो, बात एक ही है, कहने का ढंग है। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह होता है, एक चारित्र मोह होता है। दर्शन मोह हमारी श्रद्धा को बिगाड़ता है, चारित्र मोह हमारे पवित्र आचरण को बिगाड़ देता है, और वही अज्ञान कहलाता है। अपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होना, ये दर्शन मोह का काम है। हमारी श्रद्धा जहां होनी चाहिए आत्मा में और परमात्मा में, वो नहीं होने देता, तो ये दर्शन मोह है, पर उसको हम अज्ञान कह देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये अज्ञान है हमारा, और हमारे आचरण में पवित्रता नहीं आती, उसके लिए चारित्र मोह है। तो इस तरह देखें तो अज्ञान मोह ये कषायें सब चारित्र मोह की तो प्रकृतियां हैं, कषायें। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे इस संसार का कारण क्या है? संसार का कारण हमारे कर्म हैं। वे कर्म आते कैसे हैं? हमारे निरंतर मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया चलती है, उसकी वजह से कर्म आते हैं। हम हमेशा कार्ड डालते रहते, इनविटेशन कार्ड हमारे यहाँ तांता लगा हुआ है आने वालों का, तो हमने इनविटेशन कार्ड दिया है, बुलाया है, इसलिए आते हैं। मन वचन काय की क्रिया करते हैं तो कर्म हमेशा आते रहते हैं। उसमें सूत्र जी में एक सूत्र आता है ना, देखिएगा किसी को याद आए एकदम, सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेश्वरंतानंद प्रदेश आत्मकर्मणो नहीं है, शुरू का बताइएगा एकदम। सूक्ष्म से तो याद आ रहा है, उसके पहले का नहीं याद। तो योग ज्ञान पुद्गला अनादत्ते सब अंधा, ऐसा करके आता है उसमें। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेश्व प्रदेश अनंत अनंत प्रदेश। सूक्ष्म है एक क्षेत्रावगाह अर्थात वहीं के वहीं हैं, कहीं से आना नहीं है। और कर्म के योग छह बातें उसमें आती हैं कि सूक्ष्म हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हैं, कर्म के योग्य हैं और अनंतानंत प्रदेश हैं। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मी क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेश्व अनंतानंत प्रदेश। नाम प्रत्याह, जैसा नाम है वैसे ही उनका काम है, ज्ञान आवरण है तो ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म है। तो नाम प्रत्याह सर्वतो सब तरफ से आते हैं, योग विशेषात जैसी मन वचन काय की क्रिया होगी वैसा आएगा कर्म। योग विशेषात सूक्ष्म है, एक क्षेत्रावगाह और स्थिता कहीं दूर नहीं है, वहीं स्थित है। सर्वात्म प्रदेशेशु अनंतानंद प्रदेशा, सब आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत कर्म प्रज्ञाएं आकर के और बंध जाती है, इसी का नाम तो आश्रय है। आश्रय दोनों प्रकार का होता, आश्रय का विचार करना चाहिए कि कैसे कर्म आते हैं और कर्म के आने का कारण क्या है। मुख्य चीज तो ये है, कर्म तो आ रहे हैं निरंतर, लेकिन आ रहे का कारण क्या है? क्या मैं उनको क्या मुझे उन कर्मों के आने से कोई लाभ है क्या, या मेरी हानि हो रही है? जिस चीज के आने से लाभ हो उस चीज को आने दो, जिस चीज के आने से हानि हो उसको मत आने दो, इतना तो है। अब आ तो रहा ही है, कर्म निरंतर आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, दो ही प्रकार के कर्म होते हैं।
अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म कैसे आते हैं ये भी हमें जानना चाहिए, बुरे कर्म कैसे आते हैं ये भी हमें जानना, हमारे परिणामों पर निर्भर करता है कि अगर हम अच्छे परिणाम करते हैं, मन वचन काय की क्रिया शुभ है अगर, तो जो कर्म आएंगे वे शुभ होंगे, और हमारे कषायों की मंदता है तो जो शुभ कर्म है उनकी स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और जो अशुभ कर्म है उनका स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, और कषाय अगर तीव्र है तो जो अशुभ कर्म है उनकी स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और जो शुभ कर्म है उनका स्थिति अनुभाग कमती पड़ेगा, हमें घाटा ज्यादा होने वाला है। अति करेंगे और तीव्र कषाय करेंगे तो जो है हमारी आमदनी कम है, घाटा ज्यादा है, और अगर हम अपनी कषायों को मंद कर लेते हैं, मन वचन काय की क्रिया तो करनी है लेकिन शुभ करनी है, तो अगर शुभ क्रिया करते हैं तब हमारे लिए फायदा ज्यादा है। इतना सा ही विचार हमें इस अनुप्रेक्षा के बारे में करना चाहिए, क्योंकि जो जोगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुष्कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, जो बुद्धिमान है वो उससे बचते हैं आश्रव से, पर योगों की जो चपलता है मन वचन काय की जो क्रिया है उससे तो निरंतर आश्रव हो रहा है। अब जब निरंतर ही हो रहा है, हमारा कोई उसमें वश नहीं है, तो हम क्या करें फिर?
ये तो देखने वाली, हम अनुप्रेक्षा से पूछे, उससे सलाह ले कि भाई जब निरंतर मन वचन काय की कोई ना कोई क्रिया तो होगी, उससे कर्म आएंगे तो हम क्या करें? तो कहते कि कोशिश करो कि मन वचन काय की क्रिया रुके और न रुक पावे तो अशुभ तो ना होवे शुभ हो जावे। जितना बन सके 24 घंटे में मन का उपयोग शुभ में लगाना, वाणी से शुभ ही वचन बोलना और शरीर से शुभ क्रिया करना। कहते हिंसा की क्रिया झूठ की क्रिया तो सब अशुभ है, और अहिंसा और सत्य की क्रिया सब शरीर से हो चाहे मन से हो चाहे वाणी से हो शुभ हो जाएगी। तो शुभ कर्म हमारे आवे, फिर बाद में कहते हैं कि शुभ कर्म भी जो है वो कहीं कहीं पर आएगा कि वो भी है। कर्म बंध की अपेक्षा देखा जावे तो शुभ और अशुभ तो दोनों ही कर्म है, तो बंध और आश्रय की अपेक्षा तो दोनों आश्रय है, हमें तो आश्रय से बचना है। तो कहते पहले अशुभ के आश्रय से बचा जाता है, और जब अशुभ के आश्रय से बचेंगे शुभ का आश्रय होगा, तो फिर शुभ के आश्रय से बचना नहीं है, फिर तो आत्मा में लीन हो जाएंगे तो शुभ का आश्रय अपने आप निरुद्ध हो जाएगा। शुभ की निर्जरा करने की बात कहीं नहीं है, शुभ का संवर करने की बात कहीं नहीं है, शुभ का तो संचय करने की बात है, अशुभ का आश्रय रोकने की बात जरूर आती है कि अशुभ क्रियाओं से बचें हम पहले। धर्म क्रियाओं में इसीलिए हम लगते हैं ताकि हम पाप की क्रियाओं से छूट जाएं, और धर्म की क्रिया में लग करके हम जैसे ही अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की तरफ दृष्टि पास करते हैं तो फिर हमें वो शुभ क्रियाएं भी फिर बाधक नहीं बनती। बाधक तो अशुभ क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं तो साधक बनती हैं, लेकिन वे हमारा साध नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है, ये क्लियर रखना एकदम मन। शुभ क्रिया भी मेरा साध नहीं है, वो मेरा साधन है। अशुभ से बचने के लिए मैंने साधन की तरह उस शुभ को, जैसे कि मुझे उस पार जाना है तो नाव चाहिए इस पार से उस पार जाने के लिए, नाव मेरा साध नहीं है, उस पार का किनारा मेरा साध है, लेकिन क्या करूं बीच में रास्ते में मुझे नाव का आलंबन सहारा आवश्यक है, वो मुझे उस पार तक ले जाएगा। इतना ही शुभ का काम है। तो मन वचन काय की शुभ क्रिया और कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि कहलाता है, तो विशुद्धि इन दोनों के माध्यम से ही हम अपने आश्रय को रोक सकते हैं, आश्रय को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको शुभ कर सकते हैं। दोनों प्रकार का आश्रय हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें वैसा आश्रय कर सकते हैं। बुलाया तो हमने है, बुलाया है तो हमारा बिहेवियर जैसा होगा वैसा रुकेगा। अगर बुरे कर्म आ गए हैं और वे हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो आगे से सावधान रहो कि उनको इनवाइट नहीं करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार मत करो। बुरे कर्म आ जावे तो समता रखो, तो आगे फिर वे ठहरते नहीं हैं, वे चले जाते हैं अपने आप वापस, क्योंकि मेहमान को बुला लिया और उससे बातचीत नहीं करी तो दूसरी बार थोड़ा आएगा, वो कहेगा भैया इनके बुला तो लिए थे, मैंने बिल्कुल कछु मैंने रिझबूझ ही नहीं है कुछ उनके, पहुंच जाओ सो ध्यान ही नहीं देते, अब नहीं जाएंगे इनके। तो इसी तरह हम कर सकते हैं आराम से कि अगर कोई बुरा कर्म क्रोध हमारे हृदय में आ गया, ठीक है, हमें आपसे मतलब ही नहीं, हम नाराज ही नहीं होंगे, आओ तुम आओ, अपने आप नहीं आओगे। और जब अच्छे परिणाम हो जावे, अच्छा भाव आ रहा है, बहुत अच्छा, उस समय प्रसन्न चित्त हो, उत्साह पूर्वक शुभ कार्य को उत्साह पूर्वक करो, और जो अशुभ कार्य है उसको उत्साह पूर्वक मत करो, उसमें उत्ता उत्ती रुचि मत लो। करना पड़ रहा है, कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं, पर मेरी कोई रुचि नहीं है अशुभ के करने में, मेरी तो रुचि उत्साह शुभ के करने में है। अगर इस इतना हम करते हैं तो धीरे धीरे करके अशुभ कर्म कम होते चले जाते हैं, शुभ का रेशियो बढ़ता चला जाता है। इतना शुभ कर्म तो अपने को कमा के रख ही लेना चाहिए भैया, ताकि दो बातें अच्छी सुनने का अवसर मिल सके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि इतना पुण्य तो श्रावक को और साधु को सबको संचित करना चाहिए कि जिस पुण्य के उदय में हम धर्म ध्यान कर सकें। धर्म ध्यान करने लायक पुण्य जिनके है उन्हीं को ये अवसर